मैं सचिन कुमार, सामाजिक विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष, राज्य की नीति के निदेशक तत्व अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। राज्य की नीति के निदेशक तत्व। संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 और 51 के बीच राज्य के नीति के निदेशक तत्व समाहित हैं। इन तत्वों को किस प्रकार अनेक समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह सारणी 6 में बताया गया है। निर्देशों का वर्गीकरण। प्रथम, कुछ आदर्श विशेषता आर्थिक जिनके लिए संविधान के रचयिताओं के अनुसार राज्य को प्रयास करना चाहिए। द्वितीय, विधानमंडल और कार्यपालिका को कुछ निर्देश जिनका आशय यह दिखाना है कि किसी रीति में राज्य को अपनी विधायी और कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तृतीय, नागरिकों के कुछ अधिकार जो न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों के समान प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं, किंतु राज्य अपनी विधायी और प्रशासनिक नीतियों का विनियमन करके उन्हें सुलभ कराने का प्रयास करते हैं। निर्देशों का प्रविषय। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि प्रशासन में और विधि के निर्माण में इन सिद्धांतों का अनुसरण करें। यह प्रजातांत्रिक संविधान के अधीन राज्य के उद्देश्य को समेटे हुए हैं, अर्थात उसे कल्याणकारी राज्य होना है, पुलिस राज्य नहीं। अधिकांश निर्देशों का ध्येय आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है, जिसका संकल्प उद्देशिका में लिया गया है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार अधिकांश उपबंधों के पीछे जो दर्शन है वह फेवियन समाजवाद है, जिसमें से समाजवाद निकाल दिया गया है, क्योंकि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों के राष्ट्रीयकरण का अभाव है। यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान में कोई विशिष्टवाद नहीं था। इसमें व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनियंत्रित प्राइवेट उद्यम और हित के दुर्गुणों को सामाजिक नियंत्रण और कल्याणकारी उपायों द्वारा मिटाने का यथासंभव प्रयत्न किया गया था। समाज का समाजवादी ढांचा। इसलिए पंडित नेहरू ने हमारी योजना का उद्देश्य समाज का समाजवादी ढांचा घोषित किया था, समाजवाद नहीं। कुछ लोगों के लिए समाजवाद के दो अर्थ हैं, वितरण जिसका अर्थ है जिनके पास अधिक धन है उनकी जेबें खाली करना और सुव्यवस्थीकरण, ये दोनों वांछनीय उद्देश्य हैं, किंतु ये अपने आप में समाजवाद नहीं है। उत्पादन के तंत्र पर प्रभाव डालकर वितरण करने का प्रयत्न गलत कदम होगा। ऐसा करके हम अपने आप को कमजोर करेंगे। समाजवाद का आधार है धन वृद्धि, निर्धनता का समाजवाद नहीं होता। अतएव समानता लाने की प्रक्रिया चरणों में की जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न राष्ट्रीयकरण का है। मैं समझता हूँ कि जब तक हम राष्ट्रीयकरण करके किसी काम को ठीक से चलने के लिए तैयार नहीं है, तब तक राष्ट्रीयकरण करना खतरा मोल लेना होगा। राष्ट्रीयकरण के लिए हमें वस्तुओं को चुनना होगा। मेरी समाजवाद की कल्पना यह है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हैं। समूहवाद की ओर झुकाव। यह संदर्भ में यह उल्लेख करना उचित होगा कि उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में सरकारी नीति का झुकाव समूहवाद की ओर अधिक रहा। बहुत से उद्योग, व्यापार और उत्पादन के साधनों का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 3 दशकों में या तो सीधे राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन निगमों के माध्यम से हुआ, जैसे बैंक, बीमा, उड्डयन, कोयला, खान। 42वां संशोधन। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि 42वें संशोधन अधिनियम से उद्देशिका के संशोधन द्वारा राज्य का उद्देश्य समाजवादी बताया गया है, श्रीमती गांधी ने यह कहा था कि समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है सामाजिक आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। इसी संशोधन द्वारा भाग चार में कुछ और परिवर्तन किए गए हैं। कुछ नए निर्देश जोड़कर संविधान के समाजवादी ढांचे की ओर झुकाव को बढ़ाया गया है। प्रथम, अनुच्छेद 39 का अंत स्थापित करके राज्य पर कर्तव्य डाला गया है कि वह निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार काम करेगा कि सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित हो सके, जैसे कि उद्देशिका में घोषित है। द्वितीय, अनुच्छेद 43 का अंत स्थापित करके राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह उद्योग व अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे। आर्थिक न्याय की प्रति के अर्थ में यह समाजवाद की ओर एक सशक्त कदम है। 44वां संशोधन। जनता सरकार ने उद्देशिका में जिस आर्थिक न्याय और अवसर की समानता का आश्वासन दिया था, उसे पूरा करने के लिए संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में खंड 2 अंत स्थापित किया गया। यह इस प्रकार है, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। इस सीधे साधे दिखाई पड़ने वाले संशोधन को संपत्ति के मूल अधिकार के जनता द्वारा सरकार द्वारा समाप्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उन्हें अधिग्रहणकारी कराधान और विभिन्न आजीविकाओं के लिए वेतन और मजदूरी के सामान्यीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इससे उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण किए बिना भी समाजवादी समाज की स्थापना हो सकेगी। लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए और जितने प्रभावशाली रूप से हो सके ऐसे सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के प्रयास करने के लिए अनुच्छेद 38 राज्य को आदेशित करता है, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की उन सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगा जो आय में असमानता को कम करने और व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के उन समूहों में प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर में असमानता को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं और भिन्न भिन्न धंधे करते हैं। निदेशों की मूल अधिकारों से तुलना। ये निदेश संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों से या देश की सामान्य विधि से निम्नलिखित बातों से भिन्न हैं। प्रथम, मूल अधिकार राज्य की कार्यवाही को परिसीमा में बांधते हैं। निदेशक तत्व तत्कालीन सरकार के लिए अनुदेशों के विलेख के रूप में है जो उन्हें अपने कार्यों से कुछ बातें करने का और कुछ आदर्श प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। द्वितीय, निदेश विधान द्वारा ही लागू किए जा सकते हैं। जब तक निदेश में बताई गई नीति को क्रियान्वित करने वाली कोई विधि नहीं बनती है तब तक निदेश का अनुसरण करने के नाम पर राज्य या कोई व्यक्ति किसी विद्यमान विधि या विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तृतीय, निदेश न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई ऐसे अधिकारों का सृजन नहीं करते हैं जिनका न्यायालय द्वारा निर्णय हो सके। व्यक्ति की दृष्टि से मूल अधिकार और निदेश के बीच अंतर निर्णय और अनिर्णय अधिकारों के बीच अंतर है। यह वर्गीकरण हमारे संविधान के निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से नकल किया था। उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 43 के अधीन निदेश राज्य को सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपता है, किंतु जब तक इसे समुचित विधान द्वारा लागू न किया जाए तब तक कोई कर्मकार न्यायालय में कार्यवाही करके निर्वाह मजदूरी नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि वे सरकार को बाध्य करें कि वह किसी निर्देश को क्रियान्वित करे। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 45 की समय सीमा के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना या किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए विधान बनाना। चतुर्थ, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में विरोध। यह ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निदेशक तत्व शीर्ष के अधीन जो घोषणाएं हैं वे मूल अधिकारों के रूप में भाग 3 में की गई घोषणाओं से कई मामलों में अधिक व्यापक हैं। अतएव इन दोनों प्रकार के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में पूर्विकता का प्रश्न उपस्थित हो सकता है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं और न्यायालय इस बात के लिए आबद्ध कर है कि वे किसी भी मूल अधिकार से असंगत विधि को शून्य घोषित करें, किंतु निदेशों को इस प्रकार प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। न्यायालय किसी विधि को जो अन्यथा विधि मान्य है इस आधार पर शून्य घोषित नहीं कर सकते हैं कि वे निदेशों का उल्लंघन करती है। अतएव संविधान के भाग 3 और 4 में विरोध होने पर न्यायालय में भाग 3 को अधिमान दिया जाएगा। पूर्वगामी साधारण प्रस्थापना उच्चतम न्यायालय ने 1951 में अधिकथित की थी। अब इसे एक प्रमुख अपवाद के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। 1971 में अंतः स्थापित और संविधान अधिनियम द्वारा विस्तारित अनुच्छेद 3 यह कहता है कि यद्यपि निदेश न्यायालय में सीधे प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं, किंतु यदि संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट किसी निदेश को लागू करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकेगा। निदेशों को मूल अधिकारों पर इस प्रकार प्राथमिकता देने के प्रयास को उच्चतम न्यायालय के बहुमत ने मिनर्वा मिल्स में दो प्रकार से विफल कर दिया। उसने अनुच्छेद 31 ग के विस्तार को अमान्य कर दिया, जिसके द्वारा उसे अनुच्छेद के भाग 4 के सभी या कोई निर्देश सम्मिलित किए गए थे। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन को पूर्णतः अपवर्जित करने से संविधान के आधारिक ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा। परिणामस्वरूप अनुच्छेद 31 ग अपने पूर्व स्थिति में आ गया है। अनुच्छेद 31 ग किसी विधि को तभी संरक्षण प्रदान कर सकेगा जब वह अनुच्छेद 39 ख ग के निदेश को क्रियान्वित करने के लिए हो, भाग 4 में सम्मिलित किसी अन्य निदेश के लिए नहीं। ख, यह भी अभी निर्धारित हुआ है कि मूल संविधान में निदेशों और मूल अधिकारों के बीच सूक्ष्म संतुलन है। न्यायालयों को चाहिए कि वे दोनों प्रकारों के उपबंधों का समन्वयकारी निर्वचन करके उसे बनाए रखें। निदेशक तत्वों को साधारण अधिमान नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन दो मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य के संबंध में 1951 में अधिकथित साधारण प्रस्थापना मान्य रहेगी। जैसे अनुच्छेद 45 में दिए गए निदेश को क्रियान्वित करने के लिए बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य, अनुच्छेद 31(1) के अधीन अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का मूल अधिकार का अध्यारोहण नहीं कर सकता। यह अभी निर्धारित किया गया है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को यथार्थ बनाने में सहायक के रूप में मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व रथ के दो पहिए हैं। निदेशों के पीछे अधिशास्ती। ये निदेश न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, और यदि तत्कालीन सरकार इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है तो कोई न्यायालय उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। फिर भी इन निदेशों के लिए यह घोषित किया गया है कि वे देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37। इनके पीछे अधिशास्ती राजनीतिक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था, यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी तो उसे निर्वाचन के समय मतदाताओं को उत्तर देना होगा। विपक्ष के हाथों में भी यह एक अस्त्र का कार्य करेगा, जिससे वे सरकार की आलोचना इस आधार पर कर सकें कि उसका अमुक कार्यपालक या विधायी कृत निदेशक तत्वों के विरोध में है। लेखक को निदेशों के प्रवर्तन के लिए इससे अधिक प्रभावी अधिशास्ती दिखाई पड़ती है, जिसका अभी तक सही अधिमूल्यन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 355 इस प्रकार है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंध के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। क्या अनुच्छेद 355 365 निदेशों का राज्यों द्वारा क्रियान्वयन कराने को लागू किया जा सकता है? यह निर्विवाद है कि भाग चार, जिसमें निदेशक तत्व हैं, संविधान का भाग है। निदेशों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित तो नहीं कराया जा सकता, पर अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कर्तव्य के रूप में निश्चित करता है कि विधि बनाने में इन तत्वों को राज्य को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह देखना संघ का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य जहां तक हो सके इन निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए। अतः संघ इस बात के लिए सक्षम है कि वह विशिष्ट राज्यों को यह निर्देश दे कि वे बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करे, या गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं का के वध को प्रतिषेध करे, या मादक पेयों के उपभोग का प्रतिषेध करे आदि। संघ द्वारा भेजे गए निर्देशों का अनुपालन करने से इनकार करने पर अवज्ञा करने वाले राज्य के विरुद्ध अनुच्छेद 365 लागू किया जा सकता है, अन्यथा भाग चार के निर्देश तो कागज पर छपे हुए अक्षर ही बने रहेंगे। निर्देशों की उपयोगिता। निर्देशों में विधिक कमी के कारण विभिन्न विद्वानों ने संविधान में जो कि विधिक विलेख है उसके समावेश किए जाने की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि ये तो पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। उनके अनुसार 19वीं सदी के इंग्लैंड के फैबियन समाजवाद को, जिसमें से समाजवाद निकाल दिया गया है, भारत में आयात करने का कोई औचित्य नहीं था। प्रोफेसर वेयर ने तो इसे और भी कठोर शब्दों में आलोचना की है। इन अनुच्छेदों को पढ़कर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन विषयों को न्यायालयों पर छोड़ना मूर्खता होती। यदि यह उद्देश्य है कि संविधान का सभी को आदर और स्नेह प्राप्त हो तो उसमें इन सामान्य सिद्धांतों का समावेश करके कुछ लाभ होगा ऐसा नहीं मालूम पड़ता। यदि संविधान को मूर्खता दी जानी है तो नीति के इन साधारण उद्देश्यों के निर्वाचन और उनकी पूर्ति के कारण विधानमंडलों को बड़ी कठिनाइयां होगी, जिनके कारण संविधान न्यायालय और विधानमंडल में टकराव होगा और उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। यदि इन घोषणाओं को केवल शब्द ही मानना है तो इससे संविधान की विश्वसनीयता कम होगी। किंतु संविधान में उनका समावेश बहुत से लोगों की राय में उचित माना गया है। 1950 से संविधान के कार्यकरण से भी यही प्रकट होता है। प्रथम, सर बी एन राव ने व्यक्ति के अधिकारों के दो प्रवर्गों में विभाजन की सलाह दी थी, वे जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं और जो नहीं किए जा सकते हैं। उनके अनुसार दूसरे प्रकार के अधिकार राज्य के प्राधिकारियों के लिए नैतिक सूक्तियों के रूप में हैं। वे कम से कम शिक्षा तो दे ही सकते हैं। यह सूक्तियाँ तत्कालीन सत्ताधारियों को यह स्मरण कराने के लिए है कि भारतीय राजव्यवस्था का ध्येय आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है या आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है, जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है, जिसका केवल इतना ही अर्थ है एक व्यक्ति एक मत। यह प्राधिकारियों को यह स्मरण कराता है कि वे सामाजिक सुरक्षा और सफाई के बेहतर मानक सुनिश्चित करें और स्त्रियों तथा बालकों के प्रति कर्तव्यों पर और पिछड़े हुए जनजाति के लोगों पर दायित्वों पर बल दें। ग्रेनविल ऑस्टिन के विचारों में निर्देशों के का लक्ष्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति है। इस क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करके क्रांति को आगे बढ़ाना है। वे स्पष्ट करते हुए यह संप्रेषण करते हैं। राज्य की इन सकारात्मक बाध्यताओं की सृजना करके संविधान सभा ने भारत की भावी सरकारों को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वे व्यक्ति स्वतंत्र और लोकहित के बीच अथवा कुछ थोड़े से लोगों की संपत्ति और उनके विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए और सामान्य हित के लिए सभी मनुष्यों को समान रूप से शक्ति देकर उन्हें स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से उन्हें कुछ फायदे देने के बीच मध्यम मार्ग खोजे। 42वें और 44वें संशोधन। संक्षेप में उद्देशिका का विस्तार करते हुए निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का ध्येय अबंध नीति नहीं है, उसका ध्येय कल्याणकारी राज्य है, जिसमें राज्य की का यह लक्ष्य है कि वह अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करे। यह सभी भावी सरकारों के लिए अनुदेश विलेख के रूप में है, चाहे वे सरकारें किसी भी दल की क्यों न हो। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, समाजवाद की ओर झुकाव को 42वें और 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बढ़ा दिया गया है। 2, ये निर्देश न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सकते हैं, और यदि तत्कालीन सरकार इन्हें कार्यान्वित करने में असफल रहती है तो कोई न्यायालय सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि वह इन्हें क्रियान्वित करे। किंतु यह घोषित किया जा चुका है कि ये सभी तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, और जो सरकार जनता के मत पर टिकी हुई है वह राज्य व्यवस्था को आकार देने में इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। 3, संविधान का प्रारूप तैयार करते समय बहुत से लोगों ने इसे व्यर्थ का शब्दाडंबर माना था, किंतु गत कुछ वर्षों में संविधान के कार्यकरण से न्यायालयों में भी इसकी उपयोगिता प्रदर्शित हो गई है। जैसे न्यायालय किसी विधि को इस आधार पर अभिविधि मान्य नहीं ठहरा सकता कि वह निदेशक तत्वों का उल्लंघन करती है, किंतु बहुत सी विधियों को इसलिए संवैधानिक माना गया है कि वे निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करती हैं। अतएव वे केवल नैतिक उपदेश मात्र नहीं है, जैसा प्रोफेसर वेयर ने कहा था। उदाहरणार्थ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब भी किसी विधि पर इस आधार पर आपत्ति की जाती है कि वह अनुच्छेद 14 या 19 में विनिर्दिष्ट मूल अधिकारों का अतिलंघन करती है, तो यदि ऐसी विधि किसी निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई है तो न्यायालय उसकी विधि मान्यता का समर्थन करेगा। वह यह अभिनिर्धारित करेगा कि अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण है या अनुच्छेद 19 के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधन है। संविधान का अब संशोधन कर दिया गया है, जिससे अब उक्त निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए न्यायिक निर्वाचन की आवश्यकता नहीं है। 1971 में संविधान में अनुच्छेद 31 को जोड़कर यह उपबंध किया गया कि अनुच्छेद 39 ख ग को क्रियान्वित करने का उपबंध करने वाली विधि अनुच्छेद 14, 19 या 31 द्वारा अधिरोपित मर्यादाओं से उन्मुक्त होगी। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह संरक्षण उन सभी विधियों को प्रदान किया गया जो भाग 14 में सम्मिलित किसी भी निर्देश के प्रभावी करने के लिए हों, किंतु उच्चतम न्यायालय ने इस विस्तार को रोक दिया है। ख, अनुच्छेद 14, 19 के अधीन जो मूल अधिकार हैं उनसे भिन्न मूल अधिकारों के विषय में स्थिति यह है कि निदेश उनका अध्यारोहण तो नहीं कर सकते, किंतु मूल अधिकारों की परिधि और प्रविषय का अवधारण करने में न्यायालय निदेशक तत्वों की पूर्ण उपेक्षा भी नहीं कर सकते। उन्हें समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिससे यथासंभव दोनों को प्रभावी किया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अधीन किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए विधि बनाते समय राज्य के कर्तव्य का अवधारण करते हुए अनुच्छेद 39 क का अविलंब लिया और यह अभिनिर्धारित किया कि जहां बंदी को अपील का अधिकार है वहां राज्य उसे निर्णय के प्रति निःशुल्क देगा और राज्य के खर्चे पर उसके लिए अधिवक्ता की व्यवस्था करेगा। ग, विधान की संवैधानिक विधि मान्यता अवधारित करने के विषय में ही नहीं किंतु कानूनों के निर्वाचन में भी न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निदेशक तत्व मूल अधिकारों के विरोधी नहीं हैं, उनके अनुपूरक हैं, और राज्य निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए नागरिक पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 43 के निर्देश के अनुसार कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए विधि बनाकर। घ, निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो नहीं है, किंतु हाल में उच्चतम न्यायालय ने उचित मामलों में निदेश निकालकर सरकार से यह अपेक्षा की है कि निदेशों ने जो लक्ष्य सम्मुख रखे हैं उनकी प्राप्ति के लिए वह अपना सकारात्मक कर्तव्य पूरा करे। संविधान का उत्तरोत्तर संशोधन करके उन मूल अधिकारों का संशोधन कर दिया गया है जिनकी विधि मान्यता के कारण राज्य कृषि आर्थिक या सामाजिक सुधार करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है जो निदेशक तत्वों द्वारा प्रकल्पित है। निर्देशों का अनुपालन। संघ और राज्यों की सरकारों ने संविधान के लागू होने के पश्चात के 50 वर्षों में इतने सारे निर्देशों के क्रियान्वयन में क्या प्रगति की है, इसका सर्वेक्षण करना कोई सरल काम नहीं है। फिर भी कुछ विशिष्ट उपलब्धियों की ओर निर्देश करना उचित होगा, जिससे इस बात का उदाहरण दिया जा सके कि सत्तारूढ़ सरकार ने इसे धार्मिक उपदेश नहीं माना है। जब इन्हें संविधान में रखा गया था, तब कुछ लोगों की धारणा थी कि ये तो उपदेश ही रह जाएंगे। क, सबसे अधिक प्रगति अनुच्छेद 39 ख के बारे में हुई है। इसमें कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। राज्य के उदारदान का वितरक समूह हित और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक लोगों के सामूहिक हित को पूरा करने के लिए होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मुख्य भौतिक संपदा कृषि है। अस्थाई व्यवस्थापन के समय से ही धन का यह महत्वपूर्ण स्रोत आधुनिक अनुवांशिक स्वत्वधारियों और मध्यवर्तियों के समूह द्वारा धारित था। देश के विभिन्न भागों में इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे जमींदार, जागीरदार, इनामदार आदि। भूमि को वास्तव में जोतने वाले कृषक, ऊंचे भाटक, मध्यवर्तियों के शोषण और विभिन्न आर्थिक कारणों से दिनों दिन निर्धन होते जा रहे थे। योजना आयोग ने अपनी पहली योजना में यह सिफारिश की थी कि इन मध्यवर्तियों का उत्सादन कर दिया जाए, जिससे कृषक का राज्य से सीधा संबंध स्थापित हो जाए। अब तो यह सुधार समस्त देश में लगभग पूरा हो गया है। इसके साथ साथ बहुत से राज्यों में अभिवृद्धि की सुरक्षा, उचित भाटक आदि के बारे में कृषकों की दशाओं में सुधार लाने के लिए विधान बनाए गए हैं। वास्तविक कृषकों के हाथों में भी भूधृति का संकेंद्रण न हो, उस उद्देश्य से बहुत से राज्यों में अधिकतम सीमा तय की गई है, अर्थात भूमि की वह अधिकतम सीमा जो कोई एक व्यक्ति धारण कर सकेगा। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी प्रकार संविधान का संशोधन करके इन सुधारों को किया जाना सुगम बनाया जाना है और इन विधियों को न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से रक्षा प्रदान की गई है। ख, अनुच्छेद 40 के निर्देश को लागू करने के लिए बहुत से अधिनियम बनाए गए हैं। यह ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की शक्ति प्रदान करने के लिए है। इस कार्यक्रम में 226,108 ग्राम पंचायतें, 5,336 क्षेत्र पंचायत और 457 जिला पंचायतें हैं। विभिन्न राज्य अधिनियमों के निर्बंधनों के अनुसार पंचायतों का गठन और उनके कृत्य विभिन्न राज्यों में अलग हैं। साधारणतया पंचायतों का निर्वाचन गांव के सभी वयस्क नागरिक करते हैं। पंचायतों को सिविल प्रशासन की शक्ति दी गई है, जैसे चिकित्सीय सहायता, गांवों की सड़कें, तालाबों और कुओं का रखरखाव, प्राथमिक शिक्षा और सफाई की व्यवस्था आदि। इन सिविल कृत्यों के अतिरिक्त पंचायतों की न्यायिक शक्तियाँ भी है। पंचायत के न्यायिक खंडों को 500 रुपये मूल्य तक के मामलों का विचरण करने का भी अधिकारिता है। वह मामूली जुर्माने से दंडनीय लघु अपराधों का विचारण भी कर सकती है। ग्राम अधिकरणों में विधि व्यवसायी भाग नहीं ले सकते। उचित शिक्षा के अभाव, संकीर्ण मनोवृत्ति और जातीय स्वार्थ के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रशासन प्रणाली विवादास्पद रही है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के पारित होने के पश्चात लगभग सभी राज्यों ने विधि बनाकर स्वायत्त शासन के बहुत से कार्य पंचायतों के हाथ में सौंप दिए हैं। ग, कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति के लिए, जो राज्य का विषय है, केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वित्त पोषण, विपणन आदि में सहायता करने के लिए बहुत से बोर्ड बनाए हैं, जैसे अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, रेशम बोर्ड, कयर बोर्ड आदि। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना करके उसे कानूनी कृत्य सौंपे गए हैं। खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई है। घ, अधिकांश राज्यों में और 3 संघ कार्य क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए विधान बनाए गए हैं। अंग, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए विशिष्टतया ग्रामीण जनता के भारत सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया। बाद में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिहीन नियोजन प्रत्याभूति कार्यक्रम, सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और कुछ अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। च, मादक द्रव्यों और औषधियों के प्रतिषेध से संबंधित विधान संविधान के पूर्व ही कुछ प्रांतों में बन गए थे, किंतु कोई प्रभावी काम नहीं हुआ था। योजना आयोग ने इस पर ध्यान देकर मद्य निषेध जांच समिति के माध्यम से एक व्यापक स्कीम तैयार की। इसके बाद बहुत से राज्यों में पूर्णतः यह भागतः मद्य निषेध लागू किया गया है। राज्यों के वित्तीय स्रोतों की अपर्याप्तता के कारण ही अभी तक इस निर्देश को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि इसकी विफलता का कारण यह भी है कि लोगों ने गांधी जी के जीवन आदर्शों को अपनाया नहीं है। स्वाधीनता के बाद मद्यपान का दुर्गुण हमारी युवा पीढ़ी में जिस प्रकार फैला है वह चिंता का विषय है। यह बताना उचित होगा कि जनता प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने जो इस विषय में गांधी दर्शन के प्रबल समर्थक हैं, मद्य निषेध के कार्यक्रम को नई गति प्रदान की थी। 6. कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में प्रगति धीमी थी और विभिन्न राज्यों ने अलग अलग नीतियां अपनाई थी। इसके स्थान पर अवदंड प्रक्रिया संहिता 1973 के रूप में संघ विधान द्वारा समान प्रणाली आ गई है। इसके द्वारा न्यायिक विचारण का कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के हाथ में दिया गया है, जो न्यायपालिका के सदस्य हैं और उच्च न्यायालय के पूर्ण नियंत्रण में हैं। संविधान के अन्य भागों में दिए गए निर्देश। भाग 4 में अंतर्विष्ट निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में राज्यों को संबोधित अन्य निर्देश हैं। ये निर्देश भी न्यायालय के निर्माणाधीन नहीं है। क अनुच्छेद 350 क के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करें। ख अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ग अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ या राज्य के कार्यपालक कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाए। यद्यपि अनुच्छेद 335, 350 का 351 में अंतर्विष्ट निर्देश भाग 4 में सम्मिलित नहीं है, किंतु न्यायालयों ने यह सिद्धांत लागू करके कि संविधान के सभी भागों को साथ पढ़ा जाना चाहिए, उन पर उतना ही ध्यान दिया है। अध्याय समाप्त।